તારીખ 6/6/1996 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાં અનુભવ વર્ણન ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 202.
ગુજરાતીમાં પાનું 52 છે. નિજ ધર્મ અધિકાર થતા आत्मा का शुद्ध परिणाम रूप जो धर्म होता है वो कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, वो बात इस प्रकरण में दीप्ति दिशा में कही है. हाँ, स्वानुभव का वर्णन क्या है, धर्म को स्वानुभव कहो, एक ही बात. इस पैराग्राफ से लेना है, स्वानुभव होने से निर्विकल्प स्वानुभव के काल में ही उसी समय में, आगे भी नहीं दूसरे समय के पीछे भी नहीं, जिस समय में स्वानुभव होता है उस ही समय में सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाती है. सम्यक्त्व क्या चीज है, कृपालु देव ने उसकी परिभाषा किया है कि सर्वगुणांश वो सम्यक. आत्मा के सभी अनंत गुण, आत्मा के सभी अनंत गुण यथासंभव शुद्ध रूप परिणमन करने लग जाए. ऐसा एक भी गुण नहीं रहे कि जो पूरा पूरा विभाव रूप परिणम है. हो सकता है कि शुद्ध परिणमन पूरा नहीं हो, अधूरा हो. सम्यक्त्व गुण पूरा पूरा शुद्ध परिणमता है. श्रद्धा भी पूरी पूरी शुद्ध परिणमती है. बाकी के गुण आंशिक रूप से शुद्ध परिणमन करने लगता है. ऐसा सम्यक्त्व सर्वगुण का शुद्ध परिणमन होने में निमित्त है. जिसका आत्मा के गुणों में भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है. इसलिए एक के निमित्त से दूसरे में उसका वैसा ही असर आता है, उसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध. एक गुण दूसरा गुण का कुछ करता नहीं है, कोई गुण कोई दूसरा गुण का कुछ करता नहीं है, लेकिन निमित्त होता है. जैसे एक द्रव दूसरा द्रव का कुछ करता नहीं है लेकिन निमित्त होता है, वैसे साइंस में उसको कैटलिक एजेंट कहते हैं. आजकल कोई कैटलिक एजेंट के मान्यता में थोड़ा फर्क हुआ ऐसा सुना है, लेकिन हम जब पढ़ते थे केमिस्ट्री को तो वो बात पढ़ने में आई थी. तो केमिस्ट्री पढ़ा है उसको मालूम पड़ जाएगा कि जिसकी कोई कार्यशीलता नहीं है, मात्र जिसकी उपस्थिति के कारण से कुछ प्रक्रिया हो जाती है, बनने लगती है, उसको विज्ञान की भाषा में कैटलिक एजेंट कहते हैं. तो निमित्त समझने के लिए साइंस के विद्यार्थी को सीधा समझ में आ जाता है कि निमित्त माने कौन, निमित्त माने क्या, तुरंत समझ जाएगा. अच्छा, कैटलिक एजेंट बताया जब तो निमित्त समझ में आ गया, क्योंकि वो कुछ करता नहीं. लेकिन अगर इसकी उपस्थिति नहीं हो तो वो प्रक्रिया भी नहीं हो. उद्दीपक कहते हैं, उद्दीपक में भी क्या है, दीपन करना, दिया को जलाना, ऐसी क्रिया को उद्दीपक कहते हैं. तो उसमें जो कौ मैंने कुछ करना ऐसा आता है गुजराती भाषा में, कौ मैंने करना. जैसे कि जनक तो जन्म देने वाला, ऐसा पिता को जनक कहते हैं, जन्म देने वाले को जनक, पाछल क लगेगा. बहुत से ऐसे शब्द है जिसके पीछे क लगने से उसका कर्तापना दिखाया जाता है. ऐसे उद्दीपक तो दीपन करने वाला हो गया, तो करने वाला वो फिट नहीं बैठता है इसमें, या तो कुछ करता नहीं है वो दिखाना है। कुछ भाषा कभी कभी अपनी अपनी भाषा में कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट वर्डिंग मिलता है जो दूसरी भाषा में मिलती है। स्वानुभव होते ही निर्विकल्प सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसे स्वानुभव कहो, इस दशा को स्वानुभव कहो या कोई निर्विकल्प दशा कहो। निर्विकल्प दशा इसलिए कहते हैं कि चारित्र गुण की अवस्था में राग का विकल्प होता था और ज्ञान की दशा में ज्ञेय की आकृति होती थी, विकल्प अनुसार वो उत्पन्न होना बंद हो गया, उसका नाश हो गया, इसलिए उसको कहते हैं निर्विकल्प दशा। या आत्मसन्मुख उपयोग को, जो उपयोग आत्मा को सन्मुख हुआ, अपना जो मूल स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है उनके सन्मुख हो गया, उसको आत्मसन्मुख उपयोग भी कहो। तो स्वानुभव के उपयोग में वो बात होती है, आत्मसन्मुख उपयोग कहते हैं। वह भाव मति भाव श्रुत कहो, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान है वो आगम भाषा में बोला जाता है। मति ज्ञानावरणीय सूक्ष्म का जिसकी निमित्त है, और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का जिसमें निमित्त है, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बोला जाता है। कर्म की दशा का निमित्त वाचक वो नाम है, और वही ज्ञान अनुभव ले रहा है तो उसको भावमति और भावश्रुति भी बोलने में आता है। या स्वसंवेदन भाव कहो, उस वक्त उस समय में ज्ञान स्वयं का सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से वेदन करता है, संवेदन करता है, स्वयं का स्वसंवेदन करता है, इसलिए उसको स्वसंवेदन कहो। ये स्वानुभव का वर्णन चल रहा है, अभी सभी शब्द स्वानुभव के लिए बताया है। या वस्तुमग्न भाव कहो, वो चारित्र की प्रधानता से है कि जब स्वानुभव हुआ तो स्वरूप में लीनता हुई, उसको वस्तु मग्न भाव कहो वा स्वरूप आचरण कहो। उसको स्वरूप आचरण चारित्र भी कहते हैं, क्योंकि आचरण चारित्र में होता है, तो उसको स्वरूप आचरण कहो। स्थिरता कहो, स्वरूप में उपयोग स्थिर हो गया, दूसरा ज्ञेय के प्रति खिसका नहीं, तो स्वरूप स्थिरता को उसको स्थिर भाव कहो, स्थिरता कहो। विश्राम कहो, वहां आकुलता की जो थकावट है वो उतर जाती है, इसलिए उसको विश्राम कहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि शास्त्र वास्त्र पढ़ने में हमको तो थक जाते हैं, क्योंकि देखो अनादि काल से विकल्प करते करते तो थके नहीं। विकल्प क्या चीज है कि एक पदार्थ पर से दूसरे पदार्थ पर जाता है, फिर उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर 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 जाता है। किसी मनुष्य को बोले कि तुम फेंकड़ा मारो तो आधा घंटे में थक जाएगा, कोई घंटा भर में थक जाएगा, लेकिन ये जीव इतना ताकत वाला है कि उतना फेंकड़ा मारता है थकता नहीं है, अनाधिकार से फेंकड़ा मारता है। हिंदी में ठेकड़ा बोलता है, क्या बोलता है, खुद का, अनाधिकार से खुद का लगाता है, इधर उधर 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 थकता नहीं है। अकुलता भी बहुत होती है लेकिन थकता नहीं। तो कोई थक जाता है तो स्वरूप में विश्राम लेता है, बाहर नहीं जाता फिर, तो उसको विश्राम भाव कहते हैं। तो वहां निराकुल आनंद है और कहीं इधर उधर उपयोग लगाना नहीं है। देखिए लोग स्वाद लेने के कारण से खाने में बहुत सी आइटम बनाते हैं, 4-5-6 सब्जी बनाओ, डजन बंद अचार बनाओ, कितने 10-20 अचार बनाओ, 5-7 मिठाइयाँ रखो, 5-7 नमकीन रखो, हाँ दाल भी रखो और कड़ी भी, हाँ दोनों साथ साथ खाए, कितना उपयोग घुमाना पड़ेगा। फिर इधर से लो, 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 हाँ एक दो चीज हो जाए, कोई उपयोग घुमाने की जरूरत नहीं, भाड़ा दे दिया पेट को। क्या एक मकान है, शरीर एक मकान है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है, तो उसको भाड़ा दे दो ना, क्या किराया दे दो उनको, प्रामाणिकता से दे दो ना। कभी तुम्हारे घर में रहते हैं तो तुमको दो टाइम दे दिया, बात खत्म, फिर उसको पुरानी नोट दो या नई नोट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि नई नोट का कोई चारा ना ज्यादा देता है क्या, दे दो। थोड़ा पुद्गल डाल देने का है, पेट के खड्डे में थोड़े पुद्गल डाल देने का है, और वो भी इतना प्रमाणिक है कि जरूरत से ज्यादा मांगता भी नहीं, और फिर भी वो आप देंगे तो वो वापिस करेगा, वॉमिट करेगा। तो इधर तो जरूर नहीं है, तुमको ध्यान रखना हो रखो, यहाँ हम तो निकाल देंगे उसको, है लोभी नहीं है, और प्रमाणिक उतना है कि ज्यादा खिलाओगे तो या तो टट्टी हो जाएगी या वॉमिट हो जाएगी, उतना ही रखो बस, टैक्सी भाड़ा दे दो, सफर करते हैं, निवास करते हैं, किराया देने की बात है, इससे ज्यादा कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए खाने पीने में। और ऐसा खाने से शरीर अच्छा होता है, ऐसा खाने से शरीर अच्छा हो, वो भी भूल जाना। लाख अच्छी चीज खाएं, आयुष पूरा होकर मरने वाले हैं, और आशा तक उदय में बीमार होने वाले हैं। मुनियों को रोग आता है, वो कहाँ, वो तो एक दफे खाते हैं, आजकल की बात नहीं है, लेकिन अपने शास्त्र में जो मुनि है उसको एक दफे आहार, 24 घंटा में एक दफे आहार बोला है, दो दफे आहार नहीं बोला है, आहार भी नहीं पानी भी नहीं, एक दफे आहार पानी लेते हैं, उनको बीमारी आने का क्या कारण है, पूर्व कर्म, कोई खाने पीने से बीमारी आती है सो बात नहीं है, और खाने पीने से बीमारी नहीं आती है वो भी बात नहीं है, वो तो असाता को उदय में बीमारी आई। लेकिन ये उपयोग का खुद का लगाना वही बीमारी है, वो जीव के भाव की बीमारी है, शरीर की बीमारी आत्मा की बीमारी नहीं है। छह घंटे में विष्टा, ये शरीर है वो विष्टा बनाने की फैक्ट्री है, चाहे कुछ खाओ, सोने की भस्म खाओ ना, हीरा की भस्म खाओ। एक जमाने में श्रीमंत राजा महाराजा भस्म खाते थे, अपने औषधशाला में घर पे बना लेते थे, कोई नकली माल नहीं आ जाए इसलिए, हाँ अभी भी चलता है, अभी भी बनाते हैं लोग, वो अपने भगवान दास भी बनाते थे सागर वाले से, सागर वाले अपना औषधशाला घर में रखे थे, बनाते थे और खाते भी थे, मोती की भस्म खाते थे। तो देखो दो भाई थे, भगवान दास जी और शोभालाल जी। शोभालाल जी हट्टे कट्टे थे, भगवान दास जी ऐसे थे, शोभालाल जी पहले चले गए। जो हट्टे कट्टे थे छोटे थे, उम्र में भी छोटे थे, भगवान दास जी बड़े थे। दोनों की उम्र में 5-10 साल का फर्क होगा। वो हट्टे कट्टे छोटे पहले चले गए और वो बूढ़े होकर काफी बाद में गए। क्या खान पीन से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो है, लेकिन वो भी साइंस का लिमिटेशन है। वो कोई मेडिकल साइंस, संपूर्ण साइंस है नहीं आजकल। कोई भी पथी में रिसर्च चलता है, पूरा साइंस। विश्राम कहो, स्व सुख कहो, आत्म सुख कहो, क्योंकि वहां सुख का अनुभव होता है। अलग अलग गुण से बात लेते हैं, सम्यक्त्व गुण से बात लिया, ज्ञान गुण से बात लिया, आचरण नाम चारित्र गुण से बात किया, अब सुख गुण से बात किया, तो उसको स्वसुख कहो। गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही, जो स्वानुभव है। गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही, ताते अनुभव सारिक हो और दूसरो नहीं। तो उसमें अनंत गुण के रस है, तो अलग अलग गुण से यहाँ समझाते हैं कि उसको स्वसुख कहो। इंद्रिय या मनातीत भाव कहो, इंद्रियातीत या मनातीत भाव कहो। जो ज्ञान इंद्रियों के द्वार से प्रवृत्ति करता था, बहिर्मुख से बाहर जाता था, वही ज्ञान अंतर्मुख होकर के, अतीन्द्रिय होकर के स्वरूप का अनुभव करने लगा। मन भी छूट गया, मन का विकल्प भी छूट गया, तो मनातीत भाव को, मन से पर, अतीत माने पर, इंद्रिय से पार और मन से पार होकर के प्रवृत्ति हुआ, उसके इसलिए उसको इंद्रियातीत और मनातीत भाव को। शुद्ध उपयोग स्वरूप मग्न, शुद्ध उपयोग का है, महाशुभ और अशुभ नहीं है। उपयोग तीन प्रकार के भाव के साथ प्रवृत्ति करता है, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो यहाँ स्वानुभव में शुद्ध भाव के साथ उपयोग रहता है, इसलिए उनको शुद्धोपयोग स्वरूप मग्न कहते हैं। मग्न मैंने ली। या निश्चय भाव, स्वरस साम्य भाव, वह निश्चय भाव कहो, क्योंकि निश्चय जो आत्म स्वरूप है, मूल स्वरूप है, ऐसा तदाकार उपयोग हुआ, स्वरूपाकार उपयोग हुआ, स्वाकार उपयोग हुआ, इसलिए उसको निश्चय उपयोग भी कहते हैं, निश्चय भाव भी कहते हैं। और स्वरस साम्य भाव, अपना आत्मरस, और साम्य मैंने विषमपना, जिसमें राग द्वेष का नहीं है, वो भी चारित्र प्रधान बात है। राग द्वेष की विषमता जिसमें नहीं है, उसको समभाव कहते हैं या साम्य भाव कहते हैं। वो स्वरस साम्य भाव, और समाधि भाव, स्वरूप में लीन, शांत, समाधि भाव हो गया। तो शुद्धोपयोग को, स्वानुभव को समाधि भाव भी कहते हैं, इसलिए कि वहां आधि व्याधि उपाधि नहीं है, किंतु समाधि है। मूल शब्द आधि है, आधि व्याधि उपाधि और समाधि, तो आधि व्याधि उपाधि नहीं है, समाधि है। आधि व्याधि उपाधि में अशांतपना है और समाधि में आत्मशांति है, इसलिए उनको समाधि भाव कहते हैं। वीतराग भाव वो भी चारित्र की प्रधानता से कहते हैं। समाधि भी चारित्र की प्रधानता में, शांति की प्रधानता से कहा। वीतराग भाव जिसमें राग का बीत गया, राग जिसमें राग बीत गया उसको कहते हैं वीतराग। भगवान के मार्ग को वीतराग मार्ग कहते हैं कि नहीं, राग का मार्ग नहीं कहते हैं, शुभ राग का मार्ग नहीं है ये, अशुभ राग का मार्ग तो है ही नहीं, ये तो कोई धर्म में अशुभ भाव का उपदेश ही नहीं है। आप करो ऐसा उपदेश कोई धर्म नहीं कहेगा, लेकिन जैन धर्म को छोड़ करके सब किसी न किसी शुभ भाव को ही धर्म मनाते हैं, शुभ राग को ही धर्म मनाते हैं। वही अंतर है वीतराग धर्म में और अन्य धर्म में, वही खास अंतर है। अब तो क्या हुआ है कि वो वीतरागता का विषय अनजाना हो गया, तो संप्रदाय में शुभ राग और शुभ क्रिया को लोग धर्म मानने लग गए, तो अन्य मति जैसे हो गई है। ज्ञानियों ने क्या कहा कि ये तो अन्य मति हो गई है, क्योंकि अन्य मत में शुभ राग को धर्म मानते ही हैं, और आप जैनी होकर के भी शुभ राग को धर्म मानते हैं तो अन्य धर्म अन्य मत में और आपके मत में क्या फर्क हुआ? ये कोई फर्क नहीं हुआ। हमारे देव भी वीतराग हैं, हमारे गुरु भी वीतरागी होते हैं, और उसका निरूपित प्ररूपित धर्म भी वीतरागी धर्म बोला जाता है। राग को धर्म नहीं मानते, होता है राग, अमूक गुणस्थान पर्यंत राग का अंश चालू रहता है, फिर वो भी नाश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा नाश होकर के फिर वो पूरा नाश हो जाता है। लेकिन राग है उतना अधर्म है, और वीतरागता है उतना धर्म है, मिश्र धर्म चलता है। ये ग्रंथ में मिश्र धर्म अधिकार लिखा है दीपचंद जी साहब ने, साधक दशा में मिश्र धर्म होता है, क्योंकि पूरा राग बीत जाए तो सिद्ध हो जाए, और राग बिल्कुल नहीं बीते तो मिथ्या दृष्टि रहे, तो साधक को तो दोनों बात रहेगी, थोड़ा राग भी रहेगा थोड़ा वीतरागता भी उत्पन्न हो जाएगी। उसी का नाम तो मिश्र धर्म है या साधक दशा है, तो उसमें जितनी वीतरागता उतना धर्म है, राग बचा चाहे शुभ राग हो उतना धर्म नहीं है। जितना बहिर्मुख भाव है वो धर्म नहीं है, अंतर्मुख भाव जितना हुआ उतना धर्म है, तो कुछ अंश बहिर्मुख है कुछ अंश अंतर्मुख है साधक दशा में, और जितना बहिर्मुख अंश होता है उसके साथ राग की उत्पत्ति हो जाती है, कभी शुभ राग के कभी अशुभ राग के। पंचम गुण स्थान तक अशुभ राग की उत्पत्ति होती है, छठे गुण स्थान से अशुभ राग नहीं उत्पन्नता, केवल शुभ राग रहता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। पंच महाव्रत समिति गुप्ती के जो विकल्प है शुभ राग है, वो धर्म नहीं है। स्वरूप में लीनता वही चारित्र है, स्वरूप में स्थिरता वीतरागता वही चारित्र है, आत्मचारित्र उसको बोलते हैं। और जितना भी उपयोग बाहर आकर के अहिंसा सत्य अदब ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो भी विकल्प हुआ, जिसको अपन बाह्य चारित्र कहते हैं, वो तो अध्यात्म के प्रकरण में अचारित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचारित्र, मिथ्या चारित्र नहीं बोलते, क्योंकि सम्यक सम्यक तो उत्पन्न हो गया, इसलिए सभी गुण सम्यक हो गया, तो उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहते, लेकिन अचारित्र है, क्योंकि जो शुद्ध स्वरूप में स्थिरता लीनता वीतरागता जमना होता है, जम जाना होता है, वही चारित्र है। तो जो मूल बात नहीं जानते हैं आजकल, तो फिर बाहर के जो विकल्प है क्रिया है उनको चारित्र बोल देते हैं और उनको करने लग जाते हैं। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि ऐसा चारित्र साधक दशा में होता है, अंतर्बाह्य दोनों चारित्र होता है, अंतर्दृष्टि वाले अंतर चारित्र को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और आचरण कर लेते हैं, बहिर्दृष्टि जीव उनको समझते नहीं है, इसलिए केवल बाह्य सुवराग को ही चारित्र मान करके उसकी नकल करने लग जाते हैं। तो उस ऐसे राग की नकल करने से भीतरक चारित्र नहीं होता, ये तो राग की नकल होगी। इसलिए एक दृष्टांत देते थे कि जाड़े के दिन में बहुत ठंडी थी, कुछ मुसाफर लोग सफर कर रहे थे जंगल में पैदल, ठंड बहुत थी। सोचा कि इतनी ठंड है तो अच्छा नहीं लगता है चलने में, सर्दी लग जाएगी। उन लोगों ने क्या किया, जंगल में से थोड़ी लकड़ी, सूखी सूखी जो लकड़ी थी वो इकट्ठा किया, अपने पास चकमक या कोई दीवा सलाई थी उसको जला करके लकड़ी को जलाने लगे और ताप कर लेने को बैठ गए। तो क्या थोड़ी ठंडी कम लग रही थी अग्नि के कारण से, तो वो बात कुछ पेड़ पर बैठे बैठे बंदरों ने देखी, वो भी उसको भी ठंड लग रही थी। मनुष्य के पास तो कपड़े भी कुछ थे, इनके पास तो कपड़े वपड़े होते नहीं बंदरों के पास, तो उनको लगा कि ये बात ठीक है, यहाँ गर्मी पैदा होगी ये करने लायक। तो बंदरों ने भी क्या किया कि उन्होंने भी लकड़ी इकट्ठे किया, लकड़ी का ढेर बनाया, लेकिन इनके पास कोई जलाने के लिए दीवा सलाई तो थी नहीं। तो उसने क्या कि वो जुगनू को पकड़ पकड़ कर डालने लगे, जुगनू होते ना जुगनू, हाँ अपना आज्ञा कहिए से, वो ऐसा चमकता है आग जैसा चमकता है, इसलिए गुजराती में आज्ञा बोलते हैं। वो जुगनू को पकड़ पकड़ के डालने लगे, पकड़ पकड़ के डालने लगे, अग्नि पैदा हुई नहीं और बंदरों की ठंडी गई नहीं। ऐसे स्वरूप स्थिरता और स्वरूप स्थिरता को जो चारित्र को नहीं जानते हैं, और स्वरूप स्थिरता वालों को जो शुभ राग होता है पंचमावृत आदि का, तो अंतर की तो अशांति गई नहीं क्योंकि शांत समाधि लगी नहीं स्वरूप में स्थिरता वाली, बाहर में नकल करने लग गए जुगनू की तरह बंदरों की तरह, तो उनको तो शांति मिलेगी नहीं क्योंकि वो शुभ राग भी जलाता है। अशुभ राग से कम आकुलता है लेकिन उसमें भी आकुलता, राग में तो आकुलता होती ही है, राग मात्र आकुलित भाव है। तो ऐसे नकल करने से कोई चारित्र होता नहीं है और आत्म शांति भी मिलती नहीं है। तो जैसे कहा था कल आपके भाषण में कि दर्शन खोखला होता है तो प्रदर्शन हो जाता है, दर्शन खोखला होता है तो प्रदर्शन होता है, तो ये प्रदर्शन हो गया। तो देखो हम अहिंसा पालते हैं, वो करते हैं ब्रह्मचर्य पालते हैं, वो करते हैं, अंदर में आत्मदर्शन नहीं है और बाहर में प्रदर्शन करें, इससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। समाधि भाव, वीतराग भाव, अद्वैत अवलंबी भाव, देखो ये शब्द वेदांत में बहुत आता है, द्वैत अद्वैत, द्वैता अद्वैत, तीन मत चलते हैं। द्वैत मैंने दो पना, भेद प्रधानता वाला जो अभिप्राय है उसको द्वैत मत कहते हैं, अभेद की प्रधानता वाला अद्वैत, मैंने दोपना जिसमें नहीं है, ऐक्यपना अभेदपना है उसको अद्वैत कहते हैं। वहां एक मत चलता है वेदांत में ऐसा अलग अलग, पर जो दोनों को मानते हैं उसको द्वैता अद्वैत कहते हैं, तीन मत चलता है। अद्वैत एक मत है चलता है, एक द्वैत मत चलता है, एक द्वैता अद्वैत मत चलता है, तीन मत चलता है। वो तो भगवान की वाणी में सब बात आई ना, भगवान की वाणी में द्वैत वाली भेद प्रधानता से भी बात आई, अभेद प्रधानता से बात आई और अनेकांत रूप से दोनों की भी बात आई। तो जिसको जो जचा उठा लिया, भगवान की वाणी तो उपदेश का बड़ा स्टोर है, जिसको जो चीज अच्छी लगी उठा के भागा, ये बात हुई है, हमारा ये मत है, ऐसा नहीं चले। अद्वैत अवलंबी भाव, अद्वैत मैंने अवलंबन लेने का विषय अभेद होता है, भेद का अवलंबन लिया नहीं जाता। फिर भी कोई भेद का अवलंबन लेता है उसको विकल्प या राग की उत्पत्ति हो जाती है। पर द्रव्य के आश्रय से तो राग होता ही है, चाहे शरीर हो, चाहे भगवान की वाणी हो, चाहे साक्षात भगवान हो। लेकिन स्वरूप में जो गुण भेद पर्याय भेद है उसके अवलंबन से भी विकल्प की और राग की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए अभेद हो जाना, जो चित्त चिंता करता है उसको चित्त कहते हैं, जो ज्ञान चिंता करता है उसको कहते हैं चित्त, जो मन चित्त चिंता करता है उसको चित्त कहते हैं, मन को भी चित्त कहते हैं क्योंकि वो चिंता करता है, वो चिंता बंद हो गई इसलिए उसको कहते हैं चित्त निरोध भाव। निरोध मैंने स्वयं बंद हो जाना, अपने आप बंद हो जाना, ऑटोमेटिक बंद हो जाना, उसको निरोध कहते हैं। ध्यान की परिभाषा सूत्र जी में ये बताई है कि ध्यान किसे कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक वस्तु में अग्र होना, मुख्य करके, अग्र मैंने मुख्य करके, एक पदार्थ को मुख्य करके अन्य चिंता का निरोध मैंने स्वयं बंद हो जाना, और एक में ही मुख्य होकर के लीन हो जाना, उसको ध्यान कहने में आता है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। फिर उसका भेद प्रभेद है कि आर्द्र ध्यान किसको कहते हैं, रौद्र ध्यान किसको कहते हैं, धर्म ध्यान किसको कहते हैं, शुक्र ध्यान किसको कहते हैं। हाँ हाँ, स्वानुभव की तो बात चल रही है। जो त्रिकाली है वो अद्वैत है, जिसमें भेद नहीं है। अद्वैत अवलंबी भाव मैंने स्वानुभव भाव, क्या चलता है स्वानुभव, निज स्वाद जैसा का बात करते हैं, वर्णन करते हैं। तो जो स्वानुभव वर्णन है वो अद्वैत अवलंबी भाव है, अद्वैत आत्मस्वरूप का, त्रिकाली अद्वैत आत्मस्वरूप का अवलंबन जिसमें वर्त रहा है, ऐसे स्वानुभव भाव को दूसरा नाम अद्वैत अवलंबी भाव भी कह सकते हैं। अवलंबन किसका लिया, अनुभव में अनुभव किसका किया, क्या अनुभव त्रिकाली का किया, ऐसे अवलंबन किसका किया है कि त्रिकाली का किया। त्रिकाली है वो अद्वैत है जिसमें भेद नहीं है, अभेद है। एकता हुई लेकिन यहां पर्याय का वर्णन चलता है, और पर्याय में क्या क्या भाव है वो दर्शाते हैं, बताते हैं। तो क्या पर्याय में अद्वैत का अवलंबन ले रहा है, स्वानुभव में क्या कर रहा है कि अद्वैत मैंने अभेद स्वरूप का अवलंबन चल रहा है, उसको अद्वैत अवलंबी भाव कहने में आता है। बात तो चलती है स्वानुभव दशा की, बात चलती है लेकिन वो किसका अवलंबन लेती है वो भी बात बता दिया है। सम्यक एकांत स्वरूप का अवलंबन, एकांत स्वरूप सम्यक एकांत। एकांत दो तरह का है, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। अनेकांत भी दो प्रकार का है, मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। चित्त निरोध भाव, फिर निज धर्म भाव, यही निज धर्म है। स्वानुभव हुए यही अपना धर्म है। उद्गल का अनुभव है वो आत्मधर्म नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको अधर्म कहते हैं, धर्म नहीं कहते हैं। तो निज धर्म भाव है, यथा स्वाद रूप भाव है। यथा स्वाद मैंने जैसा अपना स्वरूप है उसका आस्वाद आता है, अनुभव होता है, उसको यथा स्वाद रूप अनुभव कहते हैं। इस प्रकार से स्वानुभव के बहुत नाम हैं, 19 नाम दिया हमने, नंबर लिखे हैं, कितने नाम लिखे हैं, 19 नाम दिया है, और 20वां देते तो भी एक और 20वां, तो भी एक स्व स्वाद रूप अनुभव दशा, ऐसा मुख्य नाम जानना, वो मुख्य नाम दे दिया कि स्व मैंने अपना, स्वाद मैंने आनंद शांति आदि का जो आस्वाद आता है, ऐसी इसका अनुभव होता है, ऐसे अनुभव दशा नाम जानना, स्व स्वाद रूप ऐसे अनुभव दशा का नाम भी एक मुख्य नाम जानना। एक ही बात है, नाम तो अलग अलग बात है, वो रस्म के मुख्यता से किया या अपनी मुख्यता से किया, स्वाद तो स्वाद है, वहाँ रस की मुख्यता से क्या, वहाँ अपनी मुख्यता से कहा। और ऐसा मुख्य नाम जानना, जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान का है, समझे, जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान का है, उसको तो स्वानुभव का काल लघु अंतर्मूर्त तक रहता है। लघु मैंने बहुत छोटा, तो उसका असंख्य समय है, यानी कुछ समय और एक आवली, आवली मैंने असंख्य समय की आवली कहते हैं, असंख्य समय के समूह को आवली कहते हैं जैन शास्त्रीय परिभाषा में, असंख्य समय के एक समूह को आवली कहते हैं, आवली के उपरांत कुछ समय होते हैं, ऐसा कम से कम लघु अंतर्मूर्त उसको बोलते हैं। बृहद अंतर्मूर्त है वो करीब 2 घड़ी का होता है, यानी 1 घंटा करीब करीब होता है, और जघन्य लघु अंतर्मूर्त होता है वो 1 सेकंड से भी, 0.5 सेकंड से भी कम भाव, कम भाग में होता है, लेकिन असंख्य समय होता है। चतुर्थ गुण स्थान का स्वानुभव का काल लघु अंतर्मूर्त तक रहता है। तुम्हारा से करता हुआ ना 7 समय होता है, हमने कहीं नहीं असंख्य समय होता है, देखो इस ग्रंथ में निकलता है, लघु अंतर्मूर्त बताया है इस ग्रंथ में। फिर उसे यह स्वानुभव बहुत काल पीछे होता है। चतुर्थ गुण स्थान में जो ऐसा शुद्ध उपयोग होता है, स्वानुभव होता है, निर्विकल्प उपयोग होता है, फिर बहुत काल के बाद होता है। पंचम गुण स्थान और 6वें 7वें गुण स्थान में जो बार बार होता है, ऐसा नहीं होता है, उसमें दूसरा अनुभव आने में काल ज्यादा रहता है, किसकी अपेक्षा से, 5वां और 6वां 7वां गुण स्थान की अपेक्षा से। 6वां गुण स्थान को सविकल्प दशा का है, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में हो जाता है। इससे अविरत सम्यक दृष्टि के काल से देशवृत्ति मैंने पंचम गुण स्थान का स्वानुभव रहने का काल ज्यादा है, और यह स्वानुभव थोड़े ही काल के बाद होता है। पंचम गुण स्थान में स्वानुभव का समय भी ज्यादा है, वो तो कहते हैं कि सप्तम गुण स्थान में भी सात समय है, ऐसा नहीं। चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में स्वानुभव का काल ज्यादा है और अंतराल का काल कम है, थोड़े काल में ही फिर आ जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में इसे लंबा काल लगता है, पंचम गुण स्थान में इससे थोड़ा लगता है। उसमें भी सभी को एक सरखा अंतराल नहीं होता है, चतुर्थ गुण स्थान में सभी को एक सरखा नहीं होता है, पंचम गुण स्थान में भी सभी को एक सरखा नहीं होता है। जो चतुर्थ गुण स्थान में अंतराल था जिसका, वही व्यक्ति को पंचम गुण स्थान में अंतराल कम हो जाता है। तो दरेक प्रत्येक व्यक्ति का अंतराल का काल अलग अलग है, एक सा नहीं होता है। इसलिए यहाँ कोई चौकस परिमाण नहीं दिया कि इतना ही होता है, ऐसा कोई फिक्स परिमाण नहीं दिया है, यही कारण से नहीं दिया है। छठे सातवें में तो सभी को क्षण क्षण में ही आता है, प्रतिक्षण आता है। और सर्ववृत्ति सर्ववृत्ति का स्वानुभव, सर्ववृत्ति मैंने साधु, उसका स्वानुभव दीर्घ अंतर्मुहूर्त तक रहता है, उसका जो शुद्धोपयोग है उसमें काल ज्यादा रहता है, सात समय नहीं रहता है उसका, तो बहुत ज्यादा रहता है। ज्ञान से भी होता है तथा बहुत अल्प अल्प काल के पीछे स्वानुभव सातवें गुण स्थान में बार बार हुआ ही करता है, बार बार हुआ ही करता है, क्षण क्षण में होता रहता है। चलते फिरते खाते पीते सोते बोलते लिखते शास्त्र लिखे और प्रवचन देवे, बीच बीच में स्वानुभव हुआ करता है। ऐसी कोई दशा, अद्भुत और अलौकिक दशा साधु भगवंत की होती है। हमारे जो तीर्थंकर के गणधर हुए, वो गणधर पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, नवकार मंत्र वो भी बोलते हैं, उसमें नमो लोए सब साहुणम आते हैं, नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुणम। तो अभी दीक्षा लिया और सातवें गुण स्थान में आरूढ़ हुआ, पहले सातवें में आएगा फिर छठे में आएगा, तो एक मिनट भी नहीं हुआ है गंधर देव का नमस्कार उसको पहुंच जाता है। नमो लोए सब साहुणम में गणधर देव का नमस्कार उसको पहुंचता है। तो जिसको गणधर देव का नमस्कार पहुंचे वो कोई मामूली व्यक्ति ऐरे गहरे की बात नहीं है, एक क्षण क्षण में स्वानुभव लेने वाला साधु भगवंत होता है, उसको भगवंत भी कहते हैं, उसे साधु कहते हैं। जो उत्कृष्ट रूप से आत्मस्वरूप को साधने में लगे रहते हैं उसको कहते हैं साधु, वो गुणवाचक नाम है, वो गुणवाचक नाम है। ऐसा साधकपना का गुण जिसको प्रकट वर्तता हो उसको साधु कहते हैं। तो उसको बाह्य प्रवृत्ति करने का समय नहीं है, इसलिए सर्वसंग परित्यागी होकर के जंगल में रह जाते हैं, क्योंकि उसको कोई प्रवृत्ति करने का अवकाश है ही नहीं कि वो कुछ प्रवृत्ति करे। वो चंदा बंदा नहीं करते, कुछ प्रवृत्ति नहीं करते। अगर हो सकता है तो शास्त्र लिखे कभी प्रवृत्ति में या प्रवचन दे दे, फिर भी बंधे हुए नहीं है। कोई काम की जिम्मेवारी साधु नहीं लेते।
ज्यादा
ઘણા કાલ પછી તેનાથી દેશોથી અનુભવ થોડા કાળમાં સર્વવિધિ ધ્યાનથી પણ થાય છે. ધ્યાનથી પણ થાય છે તો ધ્યાન મેં બેઠતે હૈ તો ભી હોતા હૈ ઓર ધ્યાન મેં નહીં બેઠતા હૈ તો ભી હોતા હૈ. ધ્યાન મેં બેઠે તો હવે હી હોય ઓર ધ્યાન મેં નહીં બેઠે તો ભી ઉનકો સ્વાનુભવ હો જાય. જબકે નીચે કે ગુણ સ્થાન મેં બહુ ભાગ ધ્યાન કે કાલ મેં હોતા હૈ. એસે ચલતે ફિરતે હોને કા બહુ કમ સંભવ હૈ. કભી કિસી કો અપવાદ રૂપ હો જાય અલગ બાત, બાકી ધ્યાન મેં સ્વાનુભવ હોતા હૈ. જબકે મુનિરાજ કો ચલતે ફિરતે ભી અનુભવ હોતા હૈ, ખાતે પીતે ભી અનુભવ હોતા હૈ, બોલતે વખત ભી હોતા હૈ, સોતે વખત ભી હોતા હૈ. નિંદ્રા ઇતની નહીં હોતી હૈ જૈસે અપને કો નિંદ્રા આતી હૈ ઉતની નિંદ્રા નહીં હોતી હૈ. રાત કો 12 બજે કે બાદ ઇસકે પહેલે કભી સોતે નહીં. તો સોતે હૈ હૈ 48 મિનિટ કે 2 ઘડી કે અંદર અંદર સોતે હૈ. 48 મિનિટ સે કમ જ્યાદા નહીં સોતે ઓર વો 48 મિનિટ મેં ભી બહોત કમ નિંદ્રા આતી હૈ. તો એસે કરવટ લેકર સોતે હૈ. કેસે સોતે હૈ? કરવટ લેકર સોતે હૈ, સીધે નહીં સોતે. ઓર ગહેરી નિંદ્રા મેં નહીં આતે કભી. કાગા નિંદર કહેતે હૈ ઉસકો, ક્યા કહેતે હૈ? જૈસે કૌવા હોતા હૈ ને, વો બહોત સતર્ક હોતા હૈ. કોઈ ભી કહીં સે ભી પથ્થર મારેગા તો પથ્થર લગે ઉસકે પહેલે તો ઉડ જાયેગા વો. એસે ઉનકા નિંદર હૈ, એસે ઉડતી રહેતી હૈ. ગહેરી નિંદર નહીં આતી હૈ, ઉડતી રહેતી હૈ. ક્યોંકિ ઉસકો સ્વાનુભવ ચાલુ હૈ, કરંટ હૈ ને, એ સ્વાનુભવ કા કરંટ લગ ગયા. જ્ઞાન ઓર આનંદ કા સ્વસંવેદન કા કરંટ ચલતા હૈ, સર્દી ગરમી કા ભાન નહીં. 5 ઇન્દ્રિયો મેં ઉપયોગ ફેલતા નહીં, 5ો ઇન્દ્રિયો મેં ઉપયોગ ફેલતા નહીં. એસી અદભુત દશા હોતી હૈ. ઉસકો નમો લઈએ સબ સાવણમ કહેને મેં આતા હૈ. છઠ્ઠે ગુણ સ્થાન મેં વો ઝૂલતે હૈ, ઝૂલા જૈસે ઝૂલતા હૈ. ક્ષણ મેં ઝૂલા એક જગે રહેતા નહીં, ક્ષણ મેં ઉધર, ક્ષણ મેં ઉધર. એસે ક્ષણ મેં છઠવા, ક્ષણ મેં સાતમા, ફિર ક્ષણ મેં છઠવા, ફિર સાતમા. એસે ઝૂલતે હૈ. મનોયોગ મેં જાતા હૈ તો પ્રવચન દેતે હૈ, શાસ્ત્ર લિખતે હૈ, વો હોતા હૈ. કભી આહાર કરતે હૈ, લેકિન એક દફે વો ભી દોપહેર કો મધ્યાહ્ન મેં. એસા નહીં ભૂખ લગે તબ ખા લે, મધ્યાહ્ન મેં એક દફે. મધ્યાહ્ન મેં ક્યોં? કે મધ્યાહ્ન મેં સભી લોગ ખાતે હૈ, સભી અપને અપને ઘર મેં ખાના બનાતે હૈ. ઉસ વખત વો જા પહોંચતે હૈ, ઉસ વખત વો ખાના ખાને કો નિકલતે હૈ. તો જિસ કિસી ને આહાર બનાયા ઇસમે સે ગોચરી મેને થોડા લે લેતે હૈ, જ્યાદા નહીં લેતે, થોડા લેતે. પેટ ભર કે કભી ખાતે નહીં, ઉણુદરી રહેતે હૈ. અને 32 કવલ સે જ્યાદા આહાર નહીં હોતા. ઇસ પ્રકાર સે બહોત સે નિયમ હૈ. ઇસકે 56 દોષ રહિત, 46 દોષ રહિત આહાર બોલા, 46 દોષ રહિત આહાર બોલા. ઇસ પ્રકાર સે વો આહાર લેતે હૈ. ક્યાં હૈ કે ફિર સ્વાનુભવ આ જાતા હૈ ને, સ્વાનુભવ આ જાતા તો એ લગાતાર નિંદ્રા નહીં હોતી ને, લગાતાર નિંદ્રા નહીં હોતી. સ્વાનુભવ તો આત્મ જાગૃતિ હૈ, તો ઉસમે નિંદ્રા કહાં સે રહેગી? એસા ઇસલિયે ગરી નિંદ્ર નહીં હોતી. ગરી નિંદ્ર હોવે તો ગુણસ્થાન સાતમાં આવે નહીં. સાતમાં ગુણસ્થાન છૂટ ગયા તો સાધુપણા છૂટ ગયા. બહાર મેં ત્યાગ લેબાસ રહી ગયા, લેકિન અંદર મેં સાધુપણા નહીં રહ્યા. ગુણસ્થાન નીચે કા જાયગા, બદલ જાયગા. हाँ भगवान के साथ जो साधु लेकिन हैं, हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, कितने साधु हुए भगवान महावीर के समोसरण में साधु थे, हो सकते हैं। पर कुछ किसी को अगर किसी को सातवां छठा गुणस्थान नहीं हो और बाह्य त्याग साधु जितना हो तो उसको द्रविलिंगी कहते हैं, और छठे सातवें गुणस्थान वाले को भावलिंगी कहते हैं। द्रविलिंगी तीन तरह के, एक साधु के सभी पंच महाव्रत समिति गुप्ति 28 मूलगुण निरतिचार पालन करे, पूरा त्याग हो, फिर भी छठा सातवां गुणस्थान के भीतर में आत्मा की दशा नहीं हो, वो द्रविलिंगी है। वो द्रविलिंगी के तीन भेद हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी इसमें होते हैं, लेकिन बाह्य का दिखाव वेश भेष साधु का होता है। चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि भी होते हैं, उसका कि बाह्य वैसा ही होता है, और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, उसका बाह्य वैसे तो ऐसा ही होता है। तीनों की और चारों की भावलिंगी की क्रिया एक शरीर की, गुण स्थान समूह का अलग अलग, ऐसा हो सकता है। इसलिए बाह्य वेश से साधु पहचाना जाता नहीं है, क्योंकि उसका तो चार भेद है। हाँ? कैसा पक्षी? संवेग, संवेग, हाँ संवेग तो होता ही, इसके बिना इतना चारित्र बाह्य चारित्र कहाँ से पाले, बाह्य चारित्र पाले कहाँ से, 28 मूलगुण पालना वो तो कोई आसान बात नहीं है। संवेग में ना उतना कसाई की मंदता सहज रहती हो, जो अपने परिणामों को दमन करके नहीं, सहज कसाई की मंदता में आ सकते हो, उनको उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम तीव्र कसाई करके पाप करो, क्योंकि पाप में तो कसाई की तीव्रता है और शुभ में कसाई की मंदता है। तो सहज जो कसाई की मंदता में रह सकते हैं, आ सकते हैं, वो पालन करे, वो क्यों तीव्र कसाई करे, कि नहीं करे, तो उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन जो जो है वो उसको वैसा ही मानना, ऐसी बात है। हाँ संवेग होता है उसको, ऐसा संवेग होता है और उसका कसाई सहज मंद रहता है। जैसे ब्रह्मचर्य है वो पांचवें गुणस्थान की सातवीं प्रतिमा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि प्रतिज्ञा लेता है कि नहीं लेता है, तो उसको मना ही करे क्या कि तुम ब्रह्मचर्य नहीं लेकर के ब्रह्मचर्य पालन करो, ऐसा करे क्या, ऐसी बात नहीं है। वो शायद जिसको होता है उसको करने देते हैं, किसी को मना ही नहीं करना है कि तुम ऐसा मत करो, कितना भी शुभ भाव करे ऐसे नहीं लेना है, वो शायद नहीं करेगा तो अशुभ में चला जाएगा। इसका निषेध तो शुद्धता के आदर पूर्वक होता है, वही सम्यक है। जो शुभ भाव का निषेध आता है ग्रंथों में या उपदेश में, भगवान की वाणी में भी आया, लेकिन शुद्ध परिणाम करने के आदर करने के स्थान में उसका निषेध किया है, वैसे सीधा निषेध नहीं किया है। जो सीधा निषेध करता है वो बात को समझते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको शुद्ध भाव समझाओ, शुद्ध भाव का पुरुषार्थ करें, तब उसको छोड़े, इसके पहले छोड़ने की बात नहीं। ग्रहण पूर्वक त्याग है, शुद्धात्मा का ग्रहण करे तो शुभ शुभ राग का त्याग करे। शुद्धात्मा का ग्रहण किए बिना शुभ राग का त्याग करेगा तो अशुभ राग में चला जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा उसको। तो बात में तो कोई विवेक तो होना चाहिए ना, ये तो बहुत महाविवेक का धर्म है, जैन धर्म है वो तो महाविवेक का धर्म है, सामान्य विवेक नहीं है, लोकोत्तर विवेक है उसमें। लोगों को भी इतना विवेक है कि अशुभ नहीं करना और शुभ करना, ये तो लौकिक विवेक है। तो अलौकिक मार्ग में लौकिक विवेक से ऊपर की बात होती है, नीचे वाली बात होती है? ऊपर की बात है। थोड़े थोड़े काल के बाद स्वानुभव सातवें गुण स्थान में बार बार हुआ ही करता है, करना नहीं पड़ता, हुआ ही रहता है। वही परिणाम कि जो पूर्व में स्वानुभव रूप हुए थे, यह तो स्वानुभव रूप रहे, परंतु वहां से वो परिणाम मुख्य रूप से कर्मधारा से निकल करके स्वरसास्वाद रूप अनुभव रूप वो हो करके बढ़ते चलते हैं। कर्मधारा मैंने क्या, जो शुभाशुभ भाव है वो कर्मधारा है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से शुभाशुभ कर्म बंधता है, और जिस भाव से कर्म बंद होता है, चाहे शुभ चाहे अशुभ, उस भाव से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि बंद और मोक्ष परस्पर विरुद्ध है। इसलिए जिस भाव से बंद होता उस भाव से मोक्ष नहीं हो सकता। तो शुभ या अशुभ बंद होता है, उससे निर्जरा होती है या मोक्ष होता है या संवर होता है, वो बात बनती नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे जो पूर्व में स्वानुभव रूप हुए थे वो तो स्वानुभव रूप रहे, परंतु जो कर्मधारा से वहां निकल करके, फिर क्या है कि शुभाशुभ कम होता जाता है, और वो रसास्वाद रूप जो स्वानुभव के परिणाम है वो बढ़ते जाते हैं। स्वानुभव दशा बढ़ती जाती है और कर्म की दशा, कर्मधारा शुभाशुभ है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे पीछे के काल आता है वैसे वैसे पीछे पीछे के परिणाम रसास्वाद रस रूप अनुभव रूप हो करके बढ़ते जाते हैं। तो बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि साधना ऊपर ऊपर के गुणस्थान में बढ़ती है और शुभाशुभ कर्मधारा बंधन कम हो जाता है। बंधन कम रह होता है और अबंध दशा बढ़ती जाती है, आखिर में बंध पूरा का पूरा खत्म होता है और अबंध दशा पूरी हो जाती है, तो उसको मोक्ष कहने में आता है। वो पूर्ण दशा है, मोक्ष है वो पूर्ण दशा है। इस प्रकार से वहां से अनुभव दशा के परिणाम बढ़ करके पलटते जाते हैं, पलटते बढ़ते जाते हैं, ऐसा कहना का अभिप्राय है। और वह क्षीण मोह गुण स्थान का अंत तक जानना, बारहवां गुण स्थान। क्षीण मोह गुण स्थान कौन सा है? बारहवां गुण स्थान। सातवें तक बात किया, फिर ध्यानस्थ दशा में आठवां होता है, नौवां होता है, दसवां होता है, फिर ग्यारहवें में नहीं आता है। क्षीण मोह वाला बारहवें में सीधा आता है, उपशम वाला ग्यारहवें आता है, तो फिर वो वापिस आता माना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ कमजोर है। और जो शायद शपक श्रेणी लगाता है वही साधु सातवें गुण स्थान में कभी जोर कर देता है तो छठे में आता नहीं। सातवें गुण स्थान दो प्रकार का है, कमजोर और जोर वाला। कमजोर होता है तो छठे में आता है। छठा सातवां दोनों साधु दशा के लायक गुण स्थान है, दोनों में साधु भी बोला जाता है। और जोर लगाता है तो श्रेणी चालू हो जाती है आठवां नौवां दसवां ऊपर ऊपर के गुण स्थान में, एकदम मिनटों में ऊपर जाता है। क्या कोई सेकंडों में जाता है, कोई मिनटों में जाता है ऊपर ऊपर के गुण स्थान में। उसका दो प्रकार है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला ग्यारहवें में आकर के फिर वापस आता है और क्षपक श्रेणी वाला दसवें से बारहवां में होकर के फिर फौरन तेरहवें गुण स्थान में अरिहंत दशा को प्राप्त होकर के तेरहवें गुण स्थान में विराजमान होते हैं। उसको केवली भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर, वो चारों प्रकट हो जाते हैं। उस तरह से ऊपर के गुणस्थान का जो विवरण है वो स्वानुभव के दौरान कहा, बाह्य क्रिया और आचरण के दौरान धर्म नहीं कहा। ये भीतर की बातें हैं, वो मुख्य बातें हैं। फिर बार में शायद ये स्थिति रह जाती है, कुछ उसकी बात आगे की बात करेंगे।